ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के विकास मॉडल में राष्ट्र प्रथम है और ये तुष्टिकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टिकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस मॉडल को समर्थन दिया है, इसीलिए उनकी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्यसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि शासन का सबका साथ सबका विकास का मॉडल कांग्रेस नहीं समझ सकती, क्योंकि ये एक परिवार को समर्पित पार्टी है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता का क्षेत्र माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की उपलब्धियों, भारत से दुनिया की अपेक्षाओं, देशवासियों के आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का विस्तृत व्याख्यान है। प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अवैध नागरिकों को वापस स्वदेश भेजने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये देशों के सामूहिक हित में है कि वे वैधानिक आवागमन बढ़ाएं और अवैध आवाजाही को रोकें। अमरीका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के बारे में कल राज्यसभा में उन्होंने बताया कि भारत सरकार अमरीकी अधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि वापस भेजे जा रहे भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। उन्होंने अवैध रूप से बाहर भेजने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसने और देशों के बीच अवैध आवागमन को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में श्री सिंह ने श्री हेगसेथ को अमरीका का रक्षा मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। दोनों मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और सूचना के आदान प्रदान तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे विषयों पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया। दोनों मंत्री भारत और अमरीका की सरकारों के बीच रक्षा क्षेत्र में नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप, व्यापार और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर भी सहमति हुई। दिल्ली की एक अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर अपना फैसला सुनाएंगे। ये मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती बिहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से संबंधित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C समेत प्रमुख चुनावी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान चुनाव आयोग के नियुक्त स्वतंत्र केंद्रीय पर्यवेक्षक, उम्मीदवार और उनके एजेंट तथा रिटर्निंग अधिकारी भी उपस्थित थे। दिल्ली की सीईओ ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी भी उम्मीदवार से कोई शिकायत नहीं मिली है। प्रमुख उद्योग संस्था एसोचैम ने कहा है कि रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि में सहयोग देने के लिए अपने बेंचमार्क रेपो रेट में करीब 50 अंकों की कटौती कर सकती है। कोविड महामारी के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने में रिजर्व बैंक ने मई 2020 में रेपो रेट 40 आधार अंकों की कटौती कर 4% कर दिया था। एसोचैम का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के रानी बेन्नूर का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान श्री धनखड़ वहां कर्नाटक वैभव साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रंग, कला, शिल्प, संगीत और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। इंडियन सुपर लीग में मेघालय में शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना आज मुंबई सिटी एफसी से होगा। मेघालय में ये लीग का पहला मैच है। आईएसएल में दोनों टीम 21 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें मुंबई सिटी एफसी ने 11 बार जीत हासिल की है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 6 बार विजयी रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।